सुप्रभात कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। नए दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाइए। आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज का दिन एक नया अवसर है। तो आइए आप और हम शुरुआत करें एक नई सुबह की कुछ गमों को भुलाकर। आकाशवाणी FM गोल्ड पर मैं हूं फरहत नाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनीता आनंद। नमस्कार अनीता।
नमस्कार फरहत। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेर इन वी गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 26th of April।
जी बिल्कुल अनीता, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से। वैश्विक रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस के पार्थिव शरीर को आज रोम में सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में दफनाया जाएगा। अंतिम संस्कार का विधि विधान वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर में भारतीय समय अनुसार दिन के 1:30 बजे शुरू होगा। दुनिया के विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों सहित हजारों लोगों की इसमें उपस्थित रहने की आशा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली विश्व के अन्य नेताओं में शामिल हैं। राष्ट्रपति मुर्मू कल रोम पहुंचे और उन्होंने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसूजा भी उनके साथ गए हैं। पिछली एक सदी में पहली बार किसी पोप का अंतिम संस्कार वेटिकन सिटी से बाहर हो रहा है। इससे पहले 1903 में पोप लियो 13वें को वेटिकन से बाहर दफनाया गया था। पोप फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे जो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख बने। उनका निधन 88 वर्ष की आयु में 21 अप्रैल को हुआ। गृह मंत्रालय ने कहा है कि उनके सम्मान में आज भारत में राजकीय शोक रहेगा और सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। सरकार ने पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी।
Prime Minister Narendra Modi will distribute over 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. In line with the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation, the 15th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. It will provide meaningful opportunities to the youth for their empowerment and effectively contributing to national development. The new recruits will be joining the central government in various ministries and departments. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow at 11 a.m. It will be the 121st episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channel of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast.
वहीं अनीता, अगर बात की जाए DRDO स्क्रैमजेट इंजन की, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1000 सेकेंड से अधिक समय तक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कॉम्बस्टर का ग्राउंड परीक्षण करके स्क्रैमजेट इंजन विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। DRDO की हैदराबाद प्रयोगशाला ने कल नव निर्मित अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट परीक्षण केंद्र में ग्राउंड परीक्षण किया। ग्राउंड परीक्षण जनवरी में 120 सेकेंड के पहले परीक्षण का अगला चरण है। सफल परीक्षण के साथ ही ये प्रणाली शीघ्र ही उड़ान योग्य कॉम्बस्टर परीक्षण के लिए तैयार हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों को बधाई दी है।
A total of 191 Pakistani nationals visiting India returned home through the Atari Wagha land route in Punjab's Amritsar yesterday. It comes after the center set a 48-hour deadline for them to leave the country in the wake of the Pahalgam terror attack. Earlier, 28 were returned to Pakistan on 24th of this month. Meanwhile, a total of 287 Indian nationals who were visiting the neighboring country have also returned.
केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल आज सिक्किम के गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों के सभी बिजली मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। बैठक में विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद आज दिन में केंद्रीय विद्युत मंत्री सिक्किम में शहरी और विद्युत क्षेत्र में जारी और प्रस्तावित विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी उपस्थित रहेंगे।
Akashwani won a total of 6 awards in various categories at the India Audio Summit and Awards 2025, the third edition of the awards, which recognize excellence in radio and audio content production, was held in Mumbai last night. We have a report.
Among the top accolades for Akashwani, former Union Minister Smriti Irani's program Nai Soch Nai Kahani, a radio journey with Smriti Irani, was named Series of the Year on radio. The 13-episode series celebrated the incredible tales of grit and determination of women in particular. The series culminated with an exclusive interview with the President of India, Draupadi Murmu, which was recorded in the President's house last year. The News Services Division's popular weekly phone-in show, Public Speak, was recognized as the best-produced audio streaming program in the health and fitness category. Other award-winning programs include Chhaya Geet, which won in the best late-night show category, Ujale Unki Yaadon Ke, named best celebrity show on air, and Safarcast, which clinched the award for best travel show. Akashwani also bagged the award for the best interstitial, showcasing its creative excellence in short-form audio content. Director General of Akashwani, Dr. Pragya Paliwal Gaur, graced the IASA 2025 as the guest of honor. Addressing the gathering, Dr. Gaur highlighted the revolution in the audio industry and how Akashwani, as India's public service broadcaster, is committed to its mission to inform, educate, and entertain the people of the country by upholding their interest. She underscored that Akashwani stands firmly for credibility and acts as a beacon in a noisy world. With Aditya Shukla's report, this is Anuja Kumar from Akashwani.
U.S. President Donald Trump has said that Russia and Ukraine are very close to a deal on ending conflict between the two countries. President Trump's remarks came following a meeting between his envoy, Steve Witkoff, and Russian President Vladimir Putin in Moscow. Ukraine was not part of the talks. Speaking in Rome, the U.S. president stated that most of the key points for a potential deal had already been agreed upon. He said the war is killing 5,000 people a week and must end soon. He also accused Ukraine of delaying a rare earth minerals deal with the U.S. Meanwhile, the Kremlin described the three-hour meeting between Mr. Witkoff and President Putin as constructive, saying it helped bring the U.S. and Russian positions closer. However, Ukrainian President Volodymyr Zelensky stressed that a full and unconditional ceasefire must come first before any talks on territorial issues. He also called for more pressure on Russia, saying it was the only way to achieve peace. According to the media reports, the U.S. plan also blocks Ukraine from joining NATO and includes the U.S. recognition of Russia's annexation of parts of Ukraine. European and Ukrainian leaders oppose this and want to discuss territory only after a ceasefire.
और अनीता, अब आईपीएल टी20 क्रिकेट की बात कर लेते हैं। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने 155 रन का लक्ष्य 5 विकेट खोकर 18 ओवर और 4 गेंदों में हासिल किया। वहीं ईशान किशन ने 34 गेंदों में 44 रन बनाए और हैदराबाद के लिए सर्वाधिक रन जुटाए। चेन्नई सुपर किंग्स के नूर अहमद ने 2 विकेट लिए। डिवाल्ड ब्रेविस ने 25 गेंदों में 42 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 19 ओवर और 5 गेंदों में 154 रन पर ही सिमट गई। सनराइजर्स हैदराबाद के हर्षल पटेल ने 4 विकेट लिए, वहीं उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और आज कोलकाता की ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और रुख कर लेते हैं महानगरों की खबरों का।
The Indian contingent for the 26th Asian Athletics Championship to be held from 27 to 31st of May in Gumi, South Korea was officially released by the Athletic Federation of India on Friday in New Delhi. The Indian team, consisting of 64 athletes, were selected based on their performance in the 28th National Federation Senior Athletic Championship, which concluded in Kochi on 24th of April. 9 athletes from Tamil Nadu are selected to participate in this prestigious championship. This includes 6 men athletes and 3 female athletes. And now for Metro News from Delhi, over to Farhat.
जी, दिल्ली में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नई कार्य योजना के बारे में. प्रदूषण फैलाने वाले और उम्र पूरी कर चुके वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोका जाएगा. दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया. इस बैठक में प्रदूषण पर चर्चा के दौरान उम्र पूरी कर चुके वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से रोकने के उपायों की समीक्षा की गई. इस बैठक के बाद श्री सिरसा ने कहा कि डेटा ऑटोमेशन और अंतर्राज्यीय संचार के माध्यम से सरकार दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रदूषण के विरुद्ध सुरक्षा कवच बना रही है. उन्होंने कहा कि इन कैमरों से पड़ोसी राज्यों से आने वाले वाहनों की पहचान की जाएगी और SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से अलर्ट भी भेजे जाएंगे. वहीं दिल्ली मेट्रो ने पिंक लाइन के सर एम विश्वेश्वरी मोती बाग मेट्रो स्टेशन पर एक पूरी प्लेटफॉर्म दीवार देश के वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित की है. दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इस दीवार पर उन वीरों के चित्र बनाए गए हैं जिन्हें भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान प्रतिष्ठित परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है. प्रत्येक चित्र के साथ उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी भी दी गई है. दिल्ली मेट्रो ने बताया कि इससे राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा मिलेगा और ये यात्रियों के बीच कृतज्ञता की भावना को भी प्रेरित करेगा. परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो सबसे विशिष्ट बहादुरी के लिए दिया जाता है.
In some more news from Chennai, Chennai City Region under the Tamil Nadu Postal Circle of the Department of Posts has entered into agreement with Anarchy, the e-commerce platform of Saravan Stores, to facilitate parcel delivery across India. This collaboration is for last mile connectivity, particularly targeting rural and remote areas where postal channel remains the most reliable delivery channel. With its extensive network of 1,64,987 post offices across the country, Department of Post continues to play a vital role in bridging the digital divide and enabling inclusive e-commerce growth. The partnership extends Anarchy's reach, ensuring timely deliveries even in far-flung villages. So far, 10,872 parcels ordered via the Anarchy app have been successfully delivered through postal channel across Tamil Nadu and other states. India Post offers a range of customer-centric solutions tailored for e-commerce businesses, including credit facility volume-based discount pickup services and API integration for end-to-end consignment tracking. Additionally, grievance redressal mechanism is set up for corporate clients, ensuring prompt resolution of delivery related issues. This partnership highlights the capabilities of the Department of Posts in providing reliable delivery solutions to growing e-commerce businesses. Saravana Stores, a well-known business group in Tamil Nadu, has ventured into e-commerce through its shopping app, Anarchy. It aims to take its 55 years of retailing legacy to the e-commerce world through Anarchy app. And in Karnataka, Minister for Forest, Ecology and Environment, Ishwar Khandre, has informed media persons that the work on Elephant Soft Release Centre will begin within 2 months at Bhadra Wildlife Sanctuary. The minister said that the detailed project report is getting ready to set up the release centre for elephants to prevent them from raiding nearby villages and crops, lands for food. He said the area for the centre is identified and work worth 55 crore rupees will begin in about 2 months, saying that 50 to 60 people die every year due to wild animal attacks. The minister said that the setting up of the release centre will mitigate the human-elephant conflict in Hassan, Chikmagalur, Shivamogga and Kodagu. To be called an elephant vihar dham, this soft release centre will have bamboo, jackfruit and grass for feeding the elephants. The forest department will capture the elephants straying into nearby villages and release them in the elephant vihar dham spread across 2,000 hectares within the sanctuary. The dham will also have barricades to prevent the elephants from escaping to human habitats. And now for news from Mumbai, over to Farhat.
जी अनिता, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मुंबई से जुड़ी खबर में स्वच्छता अभियान के बारे में। बृहन्मुंबई नगर निगम ने 28 अप्रैल से 9 मई 2025 तक पूरे मुंबई में धार्मिक स्थलों पर विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। ये अभियान प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा और इसमें स्वयंसेवी संगठनों, नागरिकों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के सामूहिक प्रयास भी शामिल होंगे। ये अभियान शहर भर में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और राजमार्गों की सफाई सहित स्वच्छता पहलों के सफल समापन के बाद शुरू किया गया है। वहीं बृहन्मुंबई नगर निगम गणेश उत्सव 2025 की तैयारी कर मूर्तिकारों को पंडालों और पर्यावरण के अनुकूल मिट्टी के लिए मुफ्त जगह भी दे रहा है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। मूर्तिकारों को हरित उत्सव सुनिश्चित करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित है। बैठक के दौरान बीएमसी अधिकारियों ने मूर्तिकारों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा की और यह आश्वासन दिया कि वार्ड कार्यालय स्तर पर उनके सामने वाली किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। बीएमसी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए त्योहार मनाने की दिशा में भी काम कर रही है।
डायरेक्टर जनरल ऑफ तेलंगाना पुलिस डॉक्टर जितेंद्र हैज इशूड एन एडवाइजरी नोटिफाइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स अबाउट इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ वीजा सर्विसेज टू पाकिस्तानी नेशनल्स। एज पर द स्टेटमेंट, ऑल एग्जिस्टिंग वैलिड वीजाज issued by India to Pakistani citizens will stand revoked with effect from tomorrow. However, the medical visas will remain valid till 29th of April. The decision excludes holders of long-term visas, LTVs, diplomatic and official visas that are not affected by the revocation. A total of about 230 Pakistani nationals in the state hold Indian visas. Pakistani citizens currently residing in the state have been urged to adhere strictly to the updated guidelines to avoid legal consequences. The Attari border will remain open for Pakistani nationals departing from India till April 30.
और अब पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं। वेव्स के हिस्से के रूप में WAFX और VFX चैलेंज ईस्ट जोनल राउंड का आयोजन शुक्रवार को सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI कोलकाता में किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और VFX मूल संगठन ABI ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें 17 शॉर्टलिस्ट किए गए VFX कंटेंट ने भाग लिया। इनमें से 3 को 1 मई से 4 मई के बीच मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में होने वाले फाइनल भाग लेने के लिए चुना गया था।
And now for weather from the metro. Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and the maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and the maximum will be around 35 degrees. Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 27 degrees and a maximum of 39 degrees. सेल्सियस।
जी अनिता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में तो जो है मौसम का जो रुख है वो बादल छाए रहेगा, लेकिन दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ने वाली है तो लोगों को इसका जो है इंतजार है वो यूं कह लीजिए कि
दे शुड बी केयरफुल।
जी बिल्कुल, गर्मी में बाहर निकलने से उन्हें जो है काफी एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो कोशिश ये कीजिए कि अपना खास ख्याल रखें, बाहर निकलें तो हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि ज्यादा गर्मी ना लगे। इसके अलावा जो लू को मारने वाले जो पेय जल हैं उसका इस्तेमाल करें जैसे कि आम पना, तो इस तरीके से आप गर्मी से बच सकते हैं। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, लेकिन कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं।
So today, Farhat is a World Intellectual Property Day. This is observed annually on 26th of April. The event was established by the World Intellectual Property Organization, that is WIPO, in the year 2000 to raise awareness of how patents, copyrights, trademarks and designs impact on daily life and to celebrate creativity and the contribution made by creators and also innovators to the development of economies and societies across the globe. 26th April was chosen as the date for World Intellectual Property Day because it coincides with the date on which the convention establishing the World Intellectual Property Organization entered into force in the year 1970. World Intellectual Property Day, that is WIPO's largest intellectual property, that is IP, and public outreach campaign.
और अनीता, आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी है. हम सब जानते हैं कि जानवर इंसान के बीच का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही खास होता है और ये बिना कहे होता है. ये मौखिक संचार की एक आवश्यकता से परे होता है और हम अपने पशु साथियों के लिए जो प्यार महसूस करते हैं वो अन्य अधिकांश रिश्तों से जो है वो बढ़कर होता है. जो उनकी जो भाषा है वो हमें नहीं आती, उसके बावजूद हमें लगता है कि हम उनके प्रति जो है वो प्रेम है वो दर्शाते हैं. तो ऐसे में ये दिन चुना गया ताकि उनके प्रति जो है वो लोगों को जागरूक किया जा सके. और इसके अलावा पशु चिकित्सालयों में पशुओं में पाए जाने वाले जीवाणुओं का दवाओं के प्रति प्रतिरोध विषय पर भी इसमें चर्चा की जाती है और लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाता है.
एंड नाउ वी रिकॉल सम ऑफ द इवेंट्स व्हिच मेक दिस डे इम्पोर्टेंट. इन द ईयर 1929 ब्रिटिश फ्लायर्स मेक अ रिकॉर्ड नॉन स्टॉप 4,130 माइल ट्रिप फ्रॉम लंदन टू इंडिया. In 1952, India says UN made disintegrative powers block consideration of issues in small countries. In the year 1973, Judge A.N. Ray became the Chief Justice of India. He held this office till the year 1977.
जी अनिता, और अगर पीछे जाएं 1841 में तो आज ही के दिन बॉम्बे गैजेट को एक नया रूप मिला था. इसे आज ही के दिन पहली बार रेशम के कपड़े पर प्रकाशित किया गया. इसे उस वक्त भारत में एक अनोखे और ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा गया जिसने प्रिंटिंग तकनीक की रचनात्मकता को दर्शाया था.
इन द ईयर 1990 वीआरपी मेनन एंड एयरफोर्स इंजीनियर ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन चंडीगढ़. इन 1992 इन गुजरात द थर्ड एनुअल गोल्डमन Environmental prize of $60,000 is awarded to her. In the year 1993, Indian Airlines IC-491 crashes in Aurangabad, killing 55 passengers. And in the year 1995, SAARC decides to launch South Asia Preferential Trade Area, that is SAPTA. And in the year 1999, India's Atanu Lahiri and Bhagyashree Thipche win the men's and women's titles respectively in the Commonwealth Chess Championship in Bikaner. The same year, the President dissolves Lok Sabha and orders fresh elections.
वहीं अगर बात की जाए 26 अप्रैल 2006 की तो भारत और उज्बेकिस्तान ने 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे और इसी की वजह से दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी मजबूती भी आई. वहीं 2008 में अमेरिका ने भारत के साथ परमाणु समझौते में कोई भी बदलाव करने से इनकार कर दिया था, बल्कि अमेरिका ने इस समझौते को लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे जिसमें घरेलू कानूनों में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु नियमों में संशोधन भी शामिल थे.
And now we remember people who are either born this day or who passed away today. We begin this segment by remembering Lucille Desiree Ball, whose death anniversary is today. She passed away in 1989, the American actress, comedian, producer and studio executive. She was recognized by Time in 2020 as one of the most influential women of the 20th century for her work in all four of these areas. She was nominated for 13 Primetime Emmy Awards, winning 5, no less, and was the recipient of several other accolades, such as the Golden Globe, Cecil B. DeMille Award, and 2 stars in the Hollywood Walk of Fame. She earned many honors, including the Women in Film Crystal Award, an induction into the Television Hall of Fame, a Kennedy Center Honor, and the Governor's Award for Academy of Television Arts and Sciences. Just to go back on her career a bit, Ball's career began in 1929. She landed work as a model. Shortly thereafter, she began her performing career on Broadway using the stage name Diane Belmont. She later appeared in films in the 1930s and 40s as a contract player for RKO Radio Pictures, being cast as a chorus girl or in similar roles. During this time, she met Cuban band leader Desi Arnaz and they eloped in 1940. In 50s, Ball ventured into television where she and Arnaz created the sitcom, and we all remember her for this, I Love Lucy. Ball produced and starred in Broadway musical Wildcat from 1960 to 61. In 62, she became the first woman to run a major television studio, Desi Lu Productions, which produced many popular television series, including Mission Impossible and Star Trek. Ball began appearing in new series, Here's Lucy with Gordon, frequent show guest Mary Jane Croft and Lucy, and Desi Jr. This program ran till 1974.
और आज ही के दिन जन्म हुआ था भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक समर्थकों में से एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, छायाकार और लेखक नितिन बोस का। वर्ष 1935 में उनकी बंगाली फिल्म भाग्य चक्र में इन्होंने फिल्म का पार्श्व गायन से परिचय करवाया। बाद में ये फिल्म हिंदी में धूप छाव नाम से बनाई गई। नितिन बोस ने अपने सिने करियर में 6 मूक फिल्मों सहित 50 से भी अधिक फिल्मों का निर्देशन और छायांकन किया। उन्हें KL सहगल और उत्तम कुमार के करियर को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। बाद में नितिन ने मुंबई आ गए और यहाँ फिल्म निर्देशन की शुरुआत की। उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक गंगा जमुना को हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जाता है। उन्होंने विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1977 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नितिन बोस की फिल्म गंगा जमुना का प्रसिद्ध गीत इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के भी काफी लोकप्रिय रहा।
Today is also the death anniversary of Srinivas Ramanujan Iyengar, the Indian mathematician. He passed away on this day in 1920. Often regarded as one of the greatest mathematicians of all time, though he had almost no formal training in pure mathematics, he made substantial contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions, including solutions to mathematical problems then considered unsolvable.
और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय अभिनेत्री मीनू मुमताज को। वे अपने समय के मशहूर कॉमेडियन महमूद अली की बहन रही। भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री रही। मीना कुमारी और मीनू मुमताज में काफी गहरी दोस्ती थी। सन 1950 से लेकर 1960 के दशक की अगर बात की जाए तो बतौर डांसर कई फिल्मों में उन्होंने काम किया। मीनू मुमताज एक डांसर के साथ साथ करेक्टर आर्टिस्ट भी रही। मीनू मुमताज का असली नाम था मलिका उन्निसा अली था। जब फिल्मों में काम करने लगी तो मीना कुमारी ने उनका नाम बदलकर मुमताज किया। मीनू मुमताज ने फिल्मी दुनिया में सखी हातिम से कदम रखा। 1950 और 1960 के दशक की कई हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया। कई बार फिल्मों में वे डांसर के तौर पर नजर आईं। इसके अलावा मशहूर फिल्मों में जैसे CID हो गई, नया दौर, ताजमहल, गबन और जमीर जैसी फिल्मों में इन्होंने एक से एक बढ़कर किरदार निभाए। पहली फिल्म सखी हातिम में मीनू मुमताज बलराज साहनी जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ थी।
Today is also the death anniversary of William James Count Basie, passed away in 1984, the American jazz pianist, organist, bandleader and composer. In 1935, he formed the Count Basie Orchestra and in 1936 took them to Chicago for a long engagement and their first recording. He led the group for almost 50 years, creating innovations like the use of two split tenor saxophones, emphasizing the rhythm section, riffing with a big band using the arrangers to broaden their sound, his minimalist piano style and others. Many musicians came to prominence under his direction, including the tenor saxophonists Lester Young and Herschel Evans, the guitarist Freddie Green, trumpeters Buck Clayton and Harry Sweets Edison, plunger trombonist Al Gray and singers Jimmy Rushing, Helen Humes, Dennis Rowland, Thelma Carpenter and Joe Williams.
और आज के दिन भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार शंकर सिंह रघुवंशी ने हमें अलविदा कहा। इन्होंने अपनी जोड़ी संगीतकार जयकिशन के साथ मिलकर बनाई और शंकर जयकिशन नाम से प्रसिद्ध हुए। शंकर जयकिशन की प्रतिभा के तो वो कायल थे ही, और जब उन्होंने शंकर के द्वारा उनकी लिखी कम्पोजिशन अम्बुआ का पेड़ है वही मुडेर है मेरे बालमा अब काहे की देर है की बनाई धुन सुनी तो उन्होंने राम गांगुली की जगह शंकर जयकिशन को ही बरसात का संगीत सौंप दिया। फिल्म बरसात की सफलता के बाद शंकर जयकिशन राज कपूर के चहेते संगीतकार बन गए। इसके बाद राज कपूर की फिल्मों के लिए शंकर जयकिशन ने बेमिसाल संगीत देकर उनकी फिल्मों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर ओवन विलियम्स रिचर्डसन, द इंग्लिश फिजिसिस्ट हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1928 फॉर हिज वर्क ऑन थर्मायोनिक इमिशन व्हिच लेड टू रिचर्डसन्स लॉ। Richardson was born in Dewsbury, Yorkshire, in England, the son of Joshua Henry and Charlotte Maria Richardson. He was educated at Batley Grammar School and Trinity College, Cambridge, where he gained first-class honours in natural sciences. After graduating in 1900, he began researching the emission of electricity and hot bodies at Cavendish Lab in Cambridge. In October 1902, he made a fellow at Trinity. In 1901, he demonstrated that the current form from a heated wire seemed to depend exponentially on the temperature of the wire with a mathematical form similar to the equation which became Richardson's law later.
और आज महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की भी पुण्यतिथि है। इन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में से गिना जाता है। गणित के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन पर ब्रिटिश लेखक रॉबर्ट केनिगल ने उनके जीवन पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द मैन हु न्यू इन्फिनिटी द लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन जो है वो है, और ये पढ़िएगा जरूर, इनमें इनकी जो सारी बातें हैं वो आपको मिल जाएंगी।
And time now to wind up our program, Aaj Savere. Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15. Thanks for tuning in. Have a great day.
Namaskar.